मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 30 अगस्त 2017 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस लाइफ मैनेजमेंट में मैं कल वाले ही विषय को आगे बढ़ाना चाहूंगा। कल हम लोग उत्तेजना के बारे में बात कर रहे थे और आपको ध्यान होगा, अगर आपने कल का लाइफ मैनेजमेंट सुना हो तो मैंने उत्तेजना का जो सामूहिक पक्ष है, यानी कि एक तो व्यक्तिगत उत्तेजना है कि हम व्यक्तिगत तौर पर उत्तेजित होकर के किसी का प्रतिकार करने लगते हैं, दूसरा है सामूहिक उत्तेजना जब हम अपने व्यक्तिगत प्रतिरोध को सामूहिक प्रतिरोध में बदल देते हैं। नेता क्या करते हैं, जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, मूलतः जो बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने समाज में बदलाव किए हैं, सत्ताएं पलटी हैं, उन्होंने दरअसल यही किया है कि भले ही उनका व्यक्तिगत आक्रोश ही क्यों न हो, जैसे गांधी जी की जीवनी में हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से उन्हें रेल के डिब्बे से निकाल दिया गया था, तो ये उनका व्यक्तिगत अपमान था, अन्याय भी था, तो उन्होंने अपने इस व्यक्तिगत अब अन्याय को, मतलब जो व्यक्ति के प्रति उनके प्रति किया गया अन्याय था, या कह लीजिए जो व्यक्तिगत उनका अपमान किया गया था, उसको समूह के अन्याय और समूह के अपमान में तब्दील कर दिया और फिर देखिए कि उसके परिणाम क्या हुए। कल हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। आइए अब मैं सच पूछे तो उस मुद्दे पर आता हूं जिसके बारे में मुझे मेल मिलते हैं, और यह मुद्दा है व्यक्तिगत उत्तेजना की। कि ठीक है, हम हर कोई लीडर नहीं बन सकता, हर कोई उस तरह के काम में इन्वॉल्व नहीं हो सकता कि वह समाज को बदलने में लग जाए, तो फिर वो क्या करे, वो उत्तेजित होता है तो इसे कैसे संभाले। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि हो सकता है कि मैं पूरी तरह सही नहीं हूं, आप सब इस पर विचार भी कीजिएगा, कि जब हमारे अंदर उत्तेजना आती है तो हमें अपनी उत्तेजना को समझना चाहिए। और दरअसल मुझे लगता यही है कि अगर हम इन सबके कारणों को समझ लें, जैसे कि एक बीमारी है तो बीमारी के अगर कारण समझ में आ जाएं तो डायग्नोसिस मुश्किल नहीं है, इलाज मुश्किल नहीं है। मतलब बहुत कम ही ऐसी बीमारी होंगी जिन्हें हम लाइलाज बीमारी कह सकते हैं, अदरवाइज इलाज सबके हैं, लेकिन मुश्किल होता है बीमारी को समझना। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स कि अगर उत्तेजना एक मानसिक बीमारी है, लेकिन वो मानसिक बीमारी ही है मुझे लगता है, तो हमें इसके कारणों को पहले समझना चाहिए। तो दोस्तों आइए अब हम उन कारणों को समझते हैं, और जैसे ये कारण समझ में आ जाएंगे आप देखेंगे कि अपने अपने लेवल पर आप में से हर कोई इसके इलाज ढूंढ लेगा, अपनी तरह से ही ढूंढ लेगा, उसे फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी। देखिए फ्रेंड, सबसे पहली बात तो यह है कि हमें जो उत्तेजना होती है, इस तरह की उत्तेजना की बात मैं कर रहा हूं जो विरोध के, जो अन्याय के प्रति होता है, अपमान के प्रति होता है, तो उसमें सबसे बड़ा जो तत्व होता है वो है सही या गलत का। हमें लगता है कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और हम अचानक ब्रस्ट हो जाते हैं, यानी कि फूट पड़ते हैं, है ना, अंदर से विचलित होते हैं, और विचलित होने के बाद वो गुस्से के रूप में सामने आ जाता है, और फिर बात जो भी आगे बढ़ती है, जहां तक पहुंचती है, वो एक अलग मुद्दा है। मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि सही क्या है और गलत क्या है, इसके बारे में तथ्यों को समझना उतना आसान नहीं होता है। हम सबके अपने संस्कार हैं, है ना, अपना नैतिक शास्त्र है, उसके आधार पर हम ये फैसला कर लेते हैं कि यह सही है या गलत है, और यहां तक कि हमारे अपने विधि हैं, कानून हैं, उसके आधार पर हम सही और गलत का निर्णय लेते हैं। तो देखिए, बहुत सी चीजें तो ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम साफ साफ बता सकते हैं कि यह गलत है, लेकिन बहुत से मामले ऐसे भी होते हैं सच पूछे तो जिनके बारे में हम बता नहीं सकते कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है। ये बड़ा मुश्किल काम होता है। जैसे मान लीजिए कि दो दोस्त आपस में लड़ रहे हों, या हस्बैंड वाइफ की का झगड़ा हो रहा हो, है ना, या किसी के साथ किसी संस्थान में कोई हमें लगता है कि अन्याय हो गया है, अब हम जिनसे भी पूछेंगे या हम जिनके पक्ष में हैं, बट नेचुरल है कि वो अपनी बात बताएंगे, वो अपने ही पक्ष को रखेंगे, और वो अपने पक्ष को इस तरीके से रखेंगे कि हमें यह लगने लगता है कि नहीं, यह जो व्यक्ति है यह पूरी तरह सही है, और सारी जो गलतियां हैं वो सामने वाले की है, सामने उस संस्थान की है, हमें एकदम लगने लगता है। मजेदार बात है कि जब आप दूसरे से जाकर के बात कीजिए तो वह अपनी बात अपने पक्ष में इस तरीके से पेश करेगा कि आपको लगेगा कि यार नहीं नहीं उसकी सारी गलतियां उसकी हैं, इसकी तो कोई गलती नहीं, तो बड़ा भला आदमी है, सब अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। तो सच पूछे तो पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो मित्रों, इसके बारे में हमें थोड़ा सा डाउट में रहना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर होता है। हम देखिए, किसी के जीवन का ही सवाल है ना, तो वहां तो हम सही और गलत का अंदाजा लगाने में कोई भ्रम में नहीं रहते हैं, तुरंत पता लग जाता है कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन ज्यादातर मामलों में जहां पर इस तरह के व्यक्तिगत मामले होते हैं, तो थोड़ा सा आपको रुक करके सही और गलत के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा मित्रों, मुझे यह लगता है कि इस उत्तेजना के केंद्र में कहीं ना कहीं हमारा अवचेतन मन होता है। और देखिए, अवचेतन मन में दो चीजें होती हैं, अवचेतन मन में दो चीजें होती हैं, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उत्तेजना के सबके कारण अलग अलग होते हैं। एक घटना हो रही है जिसको देख करके आप उत्तेजित हो जाते हैं, आपको बहुत बुरा लगता है, राइट। पर हो सकता है कि उसी घटना को देखकर मुझे कोई उत्तेजना नहीं हो रही है, मुझे वो बुरा नहीं लग रहा है। अगर लग भी रहा है तो थोड़ा सा लग रहा है, इतना नहीं लग रहा है कि मैं उत्तेजित हो जाऊं। तो इसके क्या कारण है? किसी भी घटना की समान प्रतिक्रिया सभी के ऊपर क्यों नहीं होती है? इसके बारे में दो पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं दोस्तों, कि पहली बात तो है हमारा अवचेतन मन। हालांकि दूसरी बात भी अवचेतन मन से ही जुड़ी हुई है, कि हमारे अवचेतन मन में क्या बैठा हुआ है, वहां क्या मौजूद है। क्योंकि जो अवचेतन मन है वही चेतना के स्तर पर आकर के रिएक्ट करता है। हम नहीं जानते हैं बचपन में हमारे साथ क्या हुआ है, किन घटनाओं ने हमें सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, किन घटनाओं ने हमें किस किस तरीके की घटनाओं का बहुत ज्यादा विरोधी बना दिया है, किन घटनाओं को सहन करने की हमें शक्ति आ गई है, क्योंकि वो हमें गलत नहीं लगते हैं। क्योंकि हमारा जो परिवेश होती है दोस्तों, वो एक नैतिक माहौल में होती है। तो बहुत से नैतिकता के ऐसे मापदंड है जो बिल्कुल एक दूसरे के विरोधी है, कि एक समुदाय है वहां नैतिक मापदंड कुछ दूसरे हैं, और पता लगा दूसरे समुदाय के नैतिक मापदंड इस पहले समुदाय से बिल्कुल विपरीत है। पहला समुदाय उसको भयानक रूप से अनैतिक कहेगा और दूसरा समुदाय समझ ही नहीं पाएगा कि यार इसमें अनैतिक क्या है। तो एक हमारा अवचेतन मन है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसी से जुड़ा हुआ है मित्रों, वो है हमारा ईगो। ईगो हमारा हर्ट होता है, तुरंत हर्ट हो जाता है। और सच पूछे तो जो ईगो की बात है ना, ये इतनी सूक्ष्म है, इतनी महीन है कि इसको पकड़ पाना, इसको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए बहुत सतर्कता की जरूरत होती है मित्रों। अब जो पहला अवचेतन मन है, इसको लेकर के मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं। मैं अपने से ही जुड़ी घटना आपको बता रहा हूं, आप हो सकता है कि इसके माध्यम से आप सबको अपने अवचेतन मन को टटोलने में मदद मिले, मैं इसीलिए खासकर सुना रहा हूं। मित्रों, गांव में जब हम लोग रहते थे तो हमारा जो घर था वो मुख्य सड़क के बिल्कुल किनारे था। मुख्य सड़क मतलब वो कोई पक्की सड़क नहीं थी, लेकिन ऐसी सड़क थी जिसमें गाड़ियां आ जा सकती हैं, थोड़ी सी चौड़ी सड़क थी, कच्ची थी। हमारे घर से लगभग मैं समझता हूं 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, अभी भी है, वो पलमा नाम है उसका। तो जैसे उस गांव में हम एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमारा स्वागत करता था एक दारू की भट्टी, मतलब गांव के बिल्कुल इस छोर पर जो हमारे घर के नजदीक था, मधाला की दूरी 1.5-2 किलोमीटर की थी, वहां शराब की एक भट्टी थी जहां शराब बनती थी और बिकती भी थी। उस समय उन चीजों का बहुत प्रचलन था, और जब आप उसके सामने से गुजरते थे तो बिल्कुल आपको महुआ की वहां शराब बनती थी, तो आपको बिल्कुल गंध आ जाएगी कि महुआ यहां, शराब की गंध आपको आ जाएगी। होता क्या था कि शाम के समय में हमारे गांव के कुछ लोग वहां जाते थे, शराब पीकर झूमते झामते लौटते थे। शाम हो जाती थी तब, दिन में तो वो माहौल नहीं बनता था। शाम को झूमते झामते लौट रहे हैं, गिर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, झगड़ रहे हैं। बच्चे के रूप में मैं जब इन सब चीजों को देखता था तो मैं भयानक रूप से डर जाता था। मैं ये नहीं समझ पाता था कि ये शराबी है तो इनमें कोई ताकत तो रह नहीं गई है और मुकाबला किया जाना चाहिए। मैं उनके झगड़े से, आपसी झगड़े से, गाली गलौज से भयानक रूप से डर जाता था और अंदर भाग जाता था, दुबक जाता था, और सच पूछे तो रात में बहुत डरता भी रहता था। ये मेरे बचपन की स्थिति थी। हुआ क्या कि जब मैं बड़ा हो गया तो कोई भी जब मुझे शराबी दिखाई देने लगा तो मैं एकदम अंदर से बेचैन हो जाता था, उत्तेजित हो जाता था, और हालत यह होती थी कि मैं उसे डांटता था, बहुत डांटता था। और कुछ लोगों को तो पकड़ करके मैं, अगर आसपास में थाना है तो मैं थाने में भी ले गया कि भैया ठीक है चलो तुमको तो हमें थाने में देते। मतलब मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाता था कि कोई शराबी इस तरह से झूमते झामते सार्वजनिक स्थल पर घूमे। तो मित्रों, एक शराबी को मैंने थाने में दे दिया और इसके बाद वह दूसरे दिन मेरे पास आया, पता नहीं वो मुझे जानता था या कैसे उसने पता लगा, और उसने एक बहुत ही गजब की बात कही। उसने बात कही कि सर, मैंने तो पी रखी थी, लेकिन आपने तो नहीं पी रखी थी। इसका मतलब यह हुआ कि ठीक है, मेरा जो गलत बिहेवियर था वो तो पीने की वजह से था, तो ठीक है बात समझ में आती है कि मैं तो कुछ भी बदतमीजी कर रहा था, गलत कर रहा था, लेकिन आप तो चेतना में थे, आपको तो मुझे मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मित्रों, उसके इस प्रश्न ने मुझे झिझोड़ कर रख दिया, झिझोड़ कर रख दिया अंदर से। मैं कहा कि बिल्कुल सही बात है, मैं उत्तेजित हो गया, अपने कारण उत्तेजित हो रहा हूं, जो मेरे साथ कुछ घटनाएं बचपन की ऐसी जुड़ी हुई हैं, लेकिन मैंने जो उत्तेजित होकर के जो उसके साथ व्यवहार किया है वो सही नहीं है, उस तरीके से वो सही नहीं है। अब आप देखिए कि दोनों चीजें यहां जुड़ गई, पहली सही क्या है, गलत क्या है, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। दूसरा यह है कि यह मेरे अवचेतन मन की मेरी अपनी समस्या है, उसकी समस्या नहीं है। तो दोस्तों दूसरी बात, दूसरा पॉइंट यह है, ईगो भी आपका हर्ट होता है। अरे हमको क्या समझ रखा, हमारे सामने ये बदतमीजी कर रहा है, तब हम उत्तेजित हो जाते हैं। मैं तो दो पॉइंट और हैं, वक्त चूंकि कम है और मैं इस विषय को अब आगे नहीं बढ़ाना चाहूंगा, तो मैं केवल संकेत के तौर पर आपसे ये दोनों पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूं। पहला यह कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे अंदर सहनशीलता कम हो गई है, सहिष्णुता की भावना कम हो गई, हम दूसरों को एकोमोडेट नहीं कर पाते हैं, हम असहिष्णु होते जा रहे हैं, सहनशीलता की तो कोई सीमा नहीं है। बहुत लोग हैं बड़े बड़े दुख बर्दाश्त कर लेते हैं, और बहुत लोग हैं जो छोटे से दुख को भी पहाड़ बना देते हैं, उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। तो घटना तो छोटी है, वो उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन हम जो उत्तेजित हो गए हैं वो बहुत बड़ी हो गई है। तो इसका कारण एक ये भी हो सकता है कि हमारी सहनशीलता थोड़ी सी कम हो गई हो, इसका भी मूल्यांकन करना चाहिए। हम सबको अपने अपने लेवल पर इन सबको मापना होगा, देखना होगा। चौथी चीज ये भी है दोस्तों कि मेरा ये व्यक्तित्व कुछ इस तरीके का है कि वो असंतुलित हो जाता है, जरा से भी कोई बात होती है वो अपना बैलेंस खो देता है। इसी तरीके से जब कोई सामने इसमें घटनाएं देखता हूं, तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कारण था या मुझे उत्तेजित हो जाना चाहिए था, लेकिन याद रखिए कि जैसे ही हम अपना बैलेंस खोते हैं गिरते ही गिरते हैं। बहुत लोग छोटे से ठोकर से गिर जाते हैं, बैलेंस खो देते हैं। बहुत लोग ये हैं कि कितना भी बड़ी बाधा क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी ठोकर क्यों ना लगी हो, लेकिन वो गिरते नहीं, लड़खड़ाते हैं लेकिन अपने आप को संभाल लेते हैं। तो मित्रों ये दो पॉइंट भी देखा जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे अंदर सहनशीलता कम हो गई है, और दूसरा ये है कि हम अपना संतुलन, जो आंतरिक संतुलन है, उसे बहुत जल्दी खो देते हैं। मुझे लगता है कि इन चार पॉइंट पांच पॉइंट्स को लेकर के जब हम सब अपने अंदर झांकने लगेंगे, आत्म साक्षात्कार करने लगेंगे, अपना विश्लेषण करने लगेंगे, तो आप देखेंगे कि उत्तेजना के बहुत से तत्व जो हमें उत्तेजित करते हैं वो धीरे धीरे हमारे अंदर से खारिज होने लगेंगे और वो बहुत सही तरीके से फिर काम भी करने लगेंगे। तो दोस्तों अब मैं इस विषय को यहीं समाप्त करना चाहूंगा, इस अनुरोध के साथ कि प्लीज जो भी बातें मैंने बताई हैं उन्हें आप ज्यों का त्यों सुन करके और स्वीकार न कर लें। ये आपके अंदर विश्लेषण की मांग करती है कि आप अपना विश्लेषण खुद करें। तो दोस्तों इसी के साथ ही अब मैं इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।